ठीक है ठीक है।
Thank you.
Maturino sa mga pwede.
Sabi ko ay lingong chayteng ayotengar Sri Vishwano Kilari Nekmeriyo Nihar Sri Vishwano Kilari Nekmeriyo Nihar Oye me torto radha radha naam Braj ki gali anumai
Thank you.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणं भक्त्या विना पराधम क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणं यं प्रव्रजन्तमन्त्रेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदे तं सर्वभूतहृदयं तस्मै
आज करीब 3 महीने हो गए प्रवचन छोड़े, करीब करीब 3 महीना ही हो गए। भगवान की इच्छा से कुछ दिन वृंदावन रहा, बंबई भी मुझे जाना पड़ा। सर्वत्र ही वृंदावन की याद आ रही थी। एक एक से स्थल जगत में है, शास्त्रों में भी ऐसा है, किंतु वृंदावन जैसा धाम विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। जो इसकी महिमा उपलब्धि करेगा वही इसको समझेगा। अब विशेष करके वृंदावन की जिस पर कृपा होगी वही वृंदावन को समझेगा। वैसे प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, वृंदावम पम पावनम त्वमेव, वृंदावम मम जीवनम त्वमेव, वृंदावन मम भूषणम त्वमेव। वृंदावन हम सद जसस त्वमेव, हमारे सर्वस्व वृंदावन। वृंदावन से पंचकोशी वृंदावन को ही मत समझिए, ब्रजमंडल समझिए, विशेष करके नंदगांव वर्षाण राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन की राज, ये सब ये वृंदावन सब उसके अंतर्गत आ जाता है। प्रभु की जैसी यहाँ पर लीलाएं हुई और जैसे परिकर यहाँ पर हैं और कहीं, इन चीज़ों को समझने के लिए गीता के जो उपदेश हैं वो इसके पीठ हैं, पीठस्वरूप प्लेटफॉर्म, और उसके बाद में श्रीमद् भागवत का महल है, और उस महल में 12 स्टोरियां हैं जिसमें 9 स्टोरी नीचे है, 2 स्टोरी ऊपर है, और बीच में वो स्टोरी है 10वीं, और इसके अंदर में विभिन्न विभिन्न 90 कोठरियां हैं, कुंज हैं, और इनमें से जो विचली है उसके पांच कोण जैसे हैं, पंचकोणीय है। वो इसके पांच प्राण हैं और उसमें इनके आधार दोनों जुगल किशोर जी प्रतिष्ठित हैं। और किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? प्रेमिका की प्रेमी सेवा कर रही है, प्रेमी ही सेवा कर रहा है प्रेमिका की, कृष्ण यहां सेवा कर रहे हैं बीच में। तो जब तक गीता का मंच नहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, हम लोग उसको जड़िए मान लेंगे और सब गड़बड़ हो गया। मैं बम्बई में था, बहुत तरह के बच्चे सब लोग प्रश्न करते थे, तो एक प्रश्न किया वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बतला देना उचित समझता हूँ। गीता के संबंध में प्रश्न किया, महाराज जी मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मांग नमस्कुरु मामेव यश्यसे प्रतिजानो प्रियो अस्मि। इसका थोड़ा सा अर्थ हमको समझा दी, तो मैंने जो उसका उत्तर दिया संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आधा घंटा अधिक से अधिक 5-10 मिनट और ग्रेस दे देंगे उसमें ये लोग, उतना ही बोलूँगा, फिर धीरे 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 बढ़ाऊँगा। तो आज इसी श्लोक की साधारण रूप में मैं व्याख्या बतला रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत में, ये गीता में, गीता में ये सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। ये मत समझना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को छोड़कर, लौकिक और पारलौकिक समस्त धर्मों को छोड़कर के, विशेष करके शारीरिक और मानसिक जो वर्णाश्रम धर्म इत्यादि हैं, देवता देवियों की उपासनाएं हैं, यहाँ तक कि नारायण और द्वारकाधीश इत्यादि की जो उपासनाएं हैं, सबको छोड़कर माम एकम शरण, हमारे एकमात्र शरण में आए। यद्यपि ये अंतिम श्लोक है और कृष्ण कहते हैं कि यदि उन धर्मों को छोड़ने से कुछ पाप लगेगा तो इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ, सब पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। माता पिता के रुलाने से, भाई बंधुओं को रुलाने से, स्त्री को पति को और पति को स्त्री को रुलाने से, जो कुछ भी अधर्म होगा और सामाजिक क्रियाओं को न करने से जो कुछ भी अधर्म होगा, वर्णाश्रम धर्म के नहीं पालन करने से जो अधर्म होगा, पाप लगेगा, मैं एकदम प्रतिज्ञा करके कहता हूँ मैं सबसे तुमको बरी कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। किंतु उससे ये श्लोक अधिक श्रेष्ठ है, उसमें शरणागति करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है और इसमें शरणागति का फल और उससे भी बहुत ऊपर की बात इस श्लोक में कही गई है। श्रीमद्भागवत गीता में विशेष करके हम जब अच्छी तरह से पढ़ते हैं और आचार्यों की टीकाओं को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक जनरल उपदेश है, साधारण उपदेश है, सबके लिए साधारण रूप। इसके बाद में गुह्य, इसके बाद में गुह्यतर, इसके बाद में सर्व गुह्यतम और उसके बाद में सर्व गुह्यतम, कितना हुआ? जनरल, साधारण, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्व गुह्य, ये पांच प्रकार के उपदेश हैं। किंतु ये उपदेश विस्तृत रूप में नहीं है, ये उपदेश हैं सूत्र रूप, सूत्र रूप में है। और ये जो सूत्र हैं सर्व उपनिषदों गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत्। समस्त शास्त्र वेद पुराण उपनिषद जितने हैं ये सब गायें अर्जुन वत्स है जिसको देख करके गौ माता अपना दूध स्तन में अपने आप छोड़ देती है, वो पिघल जाती है और तब उस दूध को थोड़ा सा स्तन से ही अर्जुन को पिला देते हैं और बाकी दूध वो ले लेते हैं। बाकी दूध किसको देते हैं? सुधी, सु भी, जिसके भी मैंने बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर और ठीक है, निर्मल है। किसकी बुद्धि निर्मल है? बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े सब लोग जगत के हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। भागवत में उनको बुद्धिमान नहीं कहा, सुमेधा। सुमेधा कौन है? जो कि भगवत भजन करते हैं, जो रसिक हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि से एकमात्र भगवान का भजन ही जीवन का सार निर्णय किया है, वो तो बुद्धिमान है और बाकी सब मूर्ख हैं। मूर्खों में कैसे मूर्ख हैं? गो खर, जानवरों में गधे है। कल हम लोग आ रहे थे दिल्ली से, देखा एक गधे के ऊपर में कुत्ता बैठा हुआ है ना? और वो देख रहा है इधर उधर और गधा आराम के साथ में चला जा रहा है और वो ऐसा ऐसा बंदर करता हुआ वो कुत्ता, देखो ये विचित्र बात। इसीलिए ये गधे बड़े मूर्ख होते हैं, कुत्ते जैसे को भी अपने पीठ पर बंध करके ले जाते हैं। गंदी गंदी चीजें मनुष्य छोड़ देता है, धोबी उस पर लाद करके ले जाता है और अगले हाथ से काम नहीं करता, वो पीछे के पैर से ही काम करता है, आगे के हाथ से मुख से वो नहीं कुछ करता, पीछे से काम करता है। आगे चलाओ तो पीछे चलेगा, पीछे चलाओ तो आगे चलेगा, ऐसे मूर्ख होता है। ऐसे ही हम लोग जो भजन नहीं करते हैं भगवान का, ऐसे गधे गोखर हैं। और बुद्धिमान हैं कौन? जो भगवान का भजन। तो सुधी, जिनकी बुद्धि ठीक है, निर्मल है, उनके लिए कृष्ण मटके में दूध रख करके, बछड़े को तो थोड़ा पिला दिया और वो मटके में दूध रख लिया और उन सुधी लोगों के लिए वो सबको पिला देते हैं जो उनके प्रिय हैं, जो भगवान का भजन करते हैं और नहीं किसी को नहीं। यहाँ तक तो गीता की बात है, दूध दूह लिया गायों से, किंतु कुछ काम बच गया। दूध को दूह करके उस पर आग पर जमाओ, उसको सुंदर दही बनाओ, उसके ऊपर में मोटा एक सर लग जाएगा, मलाई होगी और मलाई को मंथन करो तो उसमें मलाई मैंने सब दूध को दही को मंथन करो, उसमें सुंदर कोमल मक्खन निकलेगा। अभी मक्खन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेंक दी जा सकती, आग पर उसको चढ़ा दो, जो मल रहेगा सो निकल जाएगा और अंत में क्या बच रहेगा? घी बच रहेगा। घी से दूसरा चीज अब कुछ नहीं बनेगा, घी ही उसका सार है। गायों से दूध करके जो दूध निकला उसको व्यास जी ने आग पर बैठाया, सुखदेव को कहा जे बेटा तू मंथन कर दे, सुखदेव जी मथनी लेकर धीरे धीरे मंथन किया, मक्खन निकला। कुछ लोगों को मक्खन उन्होंने दे दिए, नौम स्कंद तक मक्खन दिया लोगों को, किसी ने कहा कि मक्खन हम नहीं लेंगे, हम तो मक्खन का भी जो सार है वही लेंगे। तो वो दिया भागवत। इसलिए भागवत और भी श्रेष्ठ और महान है। भागवत ने जो दिया वो कहीं उपनिषदों में वेदों में नहीं है, किंतु सर्वत्र है। किस रूप में? जैसे दूध में सर्वत्र घी अणु अणु में है, ऐसे गीता के उपनिषदों में, वेदों में, रामायण पुराण महाभारत सब में है वो चीज। किंतु उसको भाई निकाल करके मत करके मक्खन बनाना ये साधारण काम नहीं है। उसको मक्खन बना करके घी निकाला गया है। ये श्रीमद् भागवत के राजपंच अध्यायी गोपी गीत भ्रमर गीत उद्धव संदेश इत्यादि में सुंदर ये घी है। और जगत में ये किसको दिया? अनाधिकारियों को नहीं दिया, एकमात्र अधिकारियों को। साधारण रूप में जो जनरल पर्सन्स हैं, साधारण व्यक्ति हैं, उनके लिए कहा कि तुम लोग अधिक मत सो, अधिक मत जगो, अधिक मत खाओ, युक्त आहार विहारस्य इत्यादि जो श्लोक है उसमें बताया। नहीं तो ये दुखपूर्ण जो योग है, दुर्लभ जो योग है, ये नहीं होगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्तावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये योग जो भगवान से और जीवों को मिलाने वाला योग है बड़ा दुर्लभ, किंतु युक्त आहार विहार तो करो। इसलिए साधारण जनों को ज्ञान दिया ये शरीर हम नहीं हैं। शरीर में आसक्त हो करके शरीर के लिए मत रो। जातस्य ही ध्रुव जन्म, ध्रुव जन्म में तस्य। अर्जुन तुम सबके लिए रोता है, सब लोग अपने परिवार बंधु भाई बंधु स्त्री पुत्र के लिए रोते हैं, तुम भी रो रहे हो। कहते इनके मारने से सब मर जाएंगे। अरे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित व्यक्ति जो होते हैं, जो चले गए संसार से, जो चले जाएंगे आज नहीं तो कल परसों में चले जाएंगे, इनके लिए वो नहीं दुखित होते। इसलिए अर्जुन तुम अपने को पंडित समझता है, तुम मूर्ख है, तुम उसके लिए मत चिंता करो। ये शरीर के अंदर में आत्मा है। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नन्दति पावकः न चान्यन् कुयदेन्ताः। ये आत्मा अजर अमर है, शरीर मरा हुआ है, इसके लिए मत चिंता करो। हाँ, एक आदमी चिंता कर सकता है कुछ, जिसको ज्ञान हो गया आज मैं भजन करने के लिए आया और शरीर भगवान ने दिया है मंदिर के रूप में, तो उसकी झाड़ू पोछी और कुछ रिपेयर इत्यादि करा सकता है। किंतु अपना मान करके नहीं, भगवान का दिया हुआ समझ करके उसकी रक्षा के लिए कर, और नहीं तो फिर भगवान का भी भजन नहीं होगा। इसलिए यहाँ तक तो ठीक है, किंतु आसक्ति उसमें मत। जब वो प्रभु मांगे उनको लौटा, किंतु पूछेंगे जैसे इसको तुम लोगों को ये दुर्लभ जो चीज़ दिया तो तुमने किया क्या? इसलिए कहते हैं जस्यांग जागृति संयमी, जिसमें संयमी जगते हैं, सा जानिसा सर्वभूतानां इत्यादि श्लोक में जो बतलाया, उसमें संयमी जगते हैं। और जिसमें संयमी जगते हैं, मुनि लोग जगते हैं, उसमें साधारण लोग सोते हैं। इसलिए तुमको भगवान का भजन करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यहाँ तक जनरल सुख दुख को बराबर समझ करके अपना कर्तव्य कर्म करो, ये जनरल बातें सब उसमें कही गई। दूसरा आता है इसके बाद ही में ब्रह्म ज्ञान, ये है गुह्य ज्ञान। आत्मा ही ब्रह्म है और स्थिति प्रगस्य का भाषा समाधस्य केशव किमाशी किम ब्रजेत इत्यादि बतलाया। ये ब्राह्मी स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, और इसका कंक्लूजन किया है 18वें अध्याय में, क्या ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षति समस्तर्वे स्थितेषु मत भक्तिम लभते परम। ब्रह्मभूत व्यक्ति सर्वत्र ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म जातीय वस्तु, ऐसा सोच करके ब्रह्म चिंतन करेंगे और कहीं भी सुखी और दुखी न होंगे। जिसको उपाय सुख और दुख जो कुछ मिल जाता है उसको सहन करेंगे और चित्त को ब्रह्म में लगाएंगे। इसका द्वितीय अध्याय के ये शब्द ये है गुह्य ज्ञान। कोई भी सुख पाओ, कोई भी दुख पाओ, इससे मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, फल की कामना मत रखो, ऐसे करते हुए चलो। ये हुआ साधारण रूप में ब्रह्म ज्ञान। इसके बाद आता है परमात्मा ज्ञान, खर पुरुष अखर पुरुष, और इसके बाद में पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम है कौन? अंगुष्ठ परिमाण में हृदय में है, उसी का चिंतन करते हैं पुनः पुनः। उसमें अब नहीं मन लगता है फिर करो, नहीं लगता है फिर करो। क्लेश अधिक त्रस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त जो पहले ब्रह्म वाला जो कहा ना, उसमें मत जाओ, खबरदार, उसमें क्लेश ही क्लेश है। इसलिए इनका आकार है, इनमें चित्त को लगाओ जोड़ो। जो इनमें चित्त लगाता है वही सन्यासी है, वही योगी है। स स सन्यासी स योगी च, और नहीं तो वो सन्यासी और केवल आग तापने से और अहम ब्रह्मास्मि कहने से नहीं होगा। इसलिए ये गुह्य तर्क और गुह्यतम है 9वां अध्याय, जिसमें एक तरफ से सब चीजों को बतलाया है। प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, उसके साथ में उसका संबंध क्या है, ये है भगवत सेवा। 9 के अंत में भी ऐसा ही कोई श्लोक कहा है वो है, और 18वें के अंत में ये बताया गया सर्व गुह्यतम भूय सुण में परमम बच इष्टो असि प्रतिजानो प्रति प्रतिजानो प्रियोसि, तुम हमारा अत्यंत प्रिय है इसलिए तुमको ये उपदेश मैं बतला रहा हूं। ये उपदेश क्या है, इसके पहले मैं नारायण की उपासना तक आ जाएगी और सब उपासनाएं आ गई, भगवत उपासना सब, किंतु ऐश्वर्य भाव से। और इस श्लोक में पांचों का डिस्क्रिप्शन है, पांचों का तात्पर्य है इस एक श्लोक के अंदर, और ऐसा है जो और किसी में नहीं है। अंतिम से तो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, नंबर 2 हुआ मद भक्तो, मद याजी मां नमस्ते, और बीच में एक रह जाता है उसको उसमें ले। तो इसमें पांचों स्थितियों का वर्णन किया जाए, यदि वो तुमसे न हो तो ये करो, वो भी तुमसे नहीं होता है तो ये करो, वो भी नहीं होता है तो ये करो, वो भी नहीं होता है तो ये करो। अरे कुछ मत करो तो हमको नमस्कार कर दो, बस इसी से हो जाएगा। इसीलिए अब हम पहले श्लोक, इस श्लोक के पहले की हम थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले में उन्होंने बतलाया मन मना हवा, अपने मन को हमारे अंदर में लगा दो। ये सहज बात नहीं है, ये मन मना भव। यदि एक आदमी किसी एक काम में मन लगा दे तो उसकी आंखें, उसका कान, नाक इत्यादि जो सेंस हैं ज्ञान की